का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं अमृतलाल नागर का लिखा व्यंग, जब बात बनाए ना बनी। बड़े बूढ़े को झूठ नहीं कह गए हैं कि परदेश जाए तो ऐसे चौकन्ने रहें जैसे बुढ़ापे में ब्याह करने वाला अपनी जवान जोरू से रहता है। हम चौकन्नेपन क्या, दस कन्नेपन की सिफारिश करते हैं, वरना ईश्वर ना करे कि किसी पर ऐसे बीते जैसी परदेश में हम पर बीती। यानी हम 5.5 हाथ के जीते जागते मौजूद रहे और परदेश ने हमारे मुंह पर कानूनी तमाचा मारकर कुछ देर के लिए यह साबित कर दिया कि हम फौत शूत यानी मर गए। शहर का नाम ठाट तो ना पूछेगा भाई, गई गुजरी बात के लिए किसी को बदनाम करने की हमारी नीयत कभी नहीं रही। हाँ, इतना जान लेना आपके लिए काफी होगा कि वह नगर एक दूसरी भाषा बोलने वालों के प्रदेश में ही और हम पापी पेट से बंधे साल भर के वास्ते वहां रहने गए थे। मकानों की समस्या के विषय में तो आप सब जानते ही हैं, हमें भी बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ा। होटल सस्ता होकर भी बड़ा महंगा था, दाम भरपूर और प्रबंध का यह हाल था कि सुबह की चाय 10 तकाजों के बाद दोपहर में मिलती थी और दोपहर का खाना अगर आज मांगा गया है तो परसों शाम तक अवश्य आ ही जाएगा। खैर, बड़ी दौड़ धूप की भाई, दफ्तरी कुर्सियों की मिन्नत खुशामत की और तकदीर ऐसी सिकंदर सिद्ध हुई कि 4 महीने बाद ही एक मकान हमारे नाम अलॉट हो गया। हम बड़े प्रसन्न हुए, मकान देखने गए। एक छोटी सी चाल थी, अर्थात उस नई बनी हुई 2 मंजिला इमारत में एक एक कमरे वाले 20 घर थे। हम अपने कार्यालय के एक सहयोगी को लेकर उस जगह को देखने गए और जब देख ही रहे थे कि एक सज्जन गोदी में अपने मुनुआ को लिए बड़ी अकड़ के साथ दाखिल हुए और अपनी भाषा में कुछ पूछा। हम तो खैर नए थे, लेकिन हमारे सहयोगी ने समझकर बात का उत्तर अंग्रेजी में दिया और फिर धड़ाधड़ बात होने लगी। उन्होंने पूछा, आप इस घर को ले रहे हैं? उसने कहा, जी हाँ। वे बोले, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि इस घर में ना आइएगा। क्यों साहब, इस घर में भूत रहते हैं क्या? भूत? उन्होंने चौंक कर शब्द दोहराया, फिर बोले, जी नहीं, यहाँ हम लोग रहते हैं। तो फिर क्या चोर उचक्कों की बस्ती है? हमारे इस प्रश्न से वे लाल भभूका हो गए। कहा, आप हमारा अपमान करते हैं, यहाँ सब शरीफ लोग रहते हैं। हम विनम्र हो गए, दीनता से कहा, यही सोचकर तो हम भी आ रहे हैं, परदेश में शरीफों का साथ ही ठीक रहता है, लेकिन आप आ नहीं सकते, यहाँ सब घर गृहस्थी वाले लोग ही रहते हैं। उन्होंने कहा, हम भी घर गृहस्थी वाले हैं, लेकिन आप परदेसी हैं, हमारे यहाँ कोई परदेसी नहीं रह सकता। हमारे दफ्तरी सहयोगी को बुरा लगा, वे भी परदेसी थे, यद्यपि हमारा उनका प्रदेश भी अलग था और प्रादेशिक भाषा भी। बिगरमा गए, बोले, परदेसी होना कोई अपराध तो नहीं? आप भी रोजी रोजगार से बंधकर किसी और प्रदेश में रहने के लिए जा सकते हैं, आपके प्रदेश के बहुत सारे लोग हमारे यहाँ रहते हैं, वे भी तो आखिर वहाँ परदेसी हुए। ये बेजा बात है भाई, हम सब भारतवासी हैं, मानव हैं। हमारे सहयोगी के इस तर्क से वे लुंगी बनियानधारी मनुआ खिलावन सज्जन फिर बढ़ गए। कहा, यह घर मैं अपने साले के लिए अलॉट करवाना चाहता था, लेकिन वेटिंग लिस्ट में उसका नाम 2 नंबर पर हो गया और आपका 1 नंबर पर। आप यदि अपनी टांग छोड़ दें तो यह घर मेरे साले को मिल जाएगा। हमने उनको समझाया, देखिए, सारी दुनिया को अपने पड़ोस में बसाइए, मगर साले ससुरे से 7 कोस दूर रहना ही आपकी गृहस्थी के लिए शुभ होगा। फिर गर्मा गए, बोले, आप मेरे साले की इंसल्ट करते हैं। हमने घबरा कर छटपट उत्तर दिया, 12 कहा मेरी मजाल नहीं जो अपमान कर सकूं, और अगर आपको लगा हो कि मैंने अपमान किया है तो मैं लिखित रूप से क्षमा मांग लूंगा, मगर हाथ आया घर ना छोड़ूंगा। आपका जी चाहे तो मुझे हंसकर या गाली देकर साला कह सकते हैं, मैं दोनों स्थितियों में अहिंसावादी बना रहूंगा। जब उनका बस ना चला तो हर मिडिल क्लास क्लर्क बाबू की तरह वे गर्मा उठे। उन्होंने निजी बात को फौरन राजनीतिक जामा पहनाते हुए कहा, आप हम पर अपना साम्राज्यवाद लादना चाहते हैं, हमारे प्रदेश में, हमारे नगर में आकर हमारे मकानों पर कब्जा करना चाहते हैं। ऑलराइट, आई विल सी यू। हमने कोई ध्यान न दिया। यह वह या कोई भी प्रदेश क्यों ना हो, सारे भारत में क्लर्क बाबू पहले पहल इसी तरह पेश आता है, पॉलिटिकल भाषा में बोलता है आई विल सी यू, और फिर आई विल सी यू के जोम के साथ में गुजराता है और बाद में हिलमिल कर एक हो जाता है। बेचारा चलती चक्की में पिसते हुए गेहूं सा क्यों कुद 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 बोले, खैर साहब अब हम उस घर में रहने लगे। हम भी बड़ी शराफत से रहने लगे। गृहस्थी के लिए आवश्यक और उचित चीज़ें लाने के साथ साथ हम गणेश और बजरंग बली के चित्र भी ले आए, घंटी, दीपक, माला, स्त्रोतों की पोथी, गुधूप बत्ती, ये सब भी लाकर सजा दी ताकि लोग हमें भला मानो समझे। ऊपर नीचे पास पड़ोस में आते जाते नमस्कार करके हमने अपना परिचय लिया दिया। चार पांच दिनों में ही उनके साथ सवेरे शाम राजनीति जमाने और अखबारी समाचारों में बहसें होने लगी। बस एक वही साहब हमसे सीधा रुख ना मिलाते थे जिनका साला पड़ोसी ना बन सका था। हमने उनकी चिंता छोड़ी, एक के नाराज होने से क्या बिगड़ता है। हमने साले वाली बात भी औरों को बतला दी, मगर एक पखवाड़ा भी ना बीता था कि हम अनुभव करने लगे कि अब लोग बाग हमसे कतराते हैं। अब नमस्कारों में मुस्कान का चमत्कार नहीं रहा, वेल सर, हाउ आर यू का शिगुफा भी ना छिड़ने लगा। पड़ोसियों के बच्चे बच्चे भी हमसे यानी अपने नए अंकल जी से टॉफी मांगने ना आने लगे। हम घबराए, भाई आखिर माजरा क्या है, कुछ ही दिनों में हम एकदम अकेले पड़ गए, यानी कि लोगों ने नमस्कार का जवाब देना भी किसी हद तक बंद कर दिया। हमने सोचा अवश्य ही कोई सालार जंगी चाल है, पर चाल क्या है यह पता नहीं चलता था। खैर, समूह में सदा दो एक नरम दिल के भी होते हैं। हमने एक पड़ोसी को बाहर ही पकड़ा, प्रेम से रेस्तरा में ले जाकर कॉफ़ी पिलाई, तब मालूम हुआ कि हमको उस चाल में रहने वाले सरकारी बाबुओं के पॉलिटिकल विचारों की जासूसी करने के लिए खास नई दिल्ली से भेजा गया है। हमने फौरन ही इसकी कार शुरू की, मगर जासूस का डर पक्का बैठ चुका था, बात हाथ से निकल चुकी थी। हमारी सफाई से पड़ोसियों का संदेह और बढ़ा। चार दिन बाद हमारे कमरे के पिछवाड़े वाले दरवाजे के पास एक मुर्गियों की ढाबली दिखाई पड़ने लगी। हम डरे कि जाने किसकी, खामोश रहे, मगर शाम को जब घर आए तो देखा कि सारी स्त्रियां अपनी भाषा में गर्मा गर्म शब्द छोकती हुई मेरे ऊपर टूट पड़ी। हमने बहुत समझाया कि हमने मुर्गी पालन का कभी नहीं किया, अरे हम घोर वैष्णव हैं, प्याज लहसुन तक नहीं खाते, मगर कौन सुनता है हमारी। दूसरे दिन मकान मालिक भी गर्माता आया। हमने उसे लिख कर दे दिया कि भाई मुर्गियां हमारी नहीं हैं, मगर उसके बाद से हम सबकी नजरों का खटकता खार हो गए। इसके बाद एक सप्ताह ही बीता था कि एक दिन सुबह सिपाही के साथ साले साहब को लेकर बहनोई साहब आ घर के दरवाज़ा खटखटाया और हमारे कुंडी खोलते ही सब लोग अंदर घुस आए और बिना पूछे पाछे धड़ाधड़ हमारा सामान बाहर फेंका जाने लगा। हमने पूछा, भाई ये माजरा क्या है। बतलाया गया कि जिनके नाम वैधानिक रूप से घर अलॉट हुआ है वह रहने आए हैं। हमने कहा, घर तो हमारे नाम अलॉट हुआ है। उन्होंने नाम पूछा, हमने अपना नाम बतलाया। वे बोले, इस नाम का किराएदार तो परसों इसी घर में हार्ट फेल से मर गया, सब लोगों की गवाही है, और हम कोई ऐरे गहरे थोड़ा ही हैं, और रही बात हमारी तो आप तो इस जबरदस्ती इस घर में घुस आए। अब आप समझ सकते हैं कि हम पर क्या गुजरी होगी, यानी अब तक हम जिंदा थे और परसों मर चुके थे। हम ना थे बल्कि ऐरे गहरे थे। हमारा सामान सड़क पर गया और घर साले का हो गया। हमारे बनाए कोई बात न बनी, बस हमारा सारा का सारा समय पूरा दिन अब फिर से अपने आप को जीवित साबित करने में ही लगता रहता है। अभी आप सुन रहे थे अमृतलाल नागर की लिखी कहानी जब बात बनाए ना बनी। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया अमित तिवारी ने।